फिर उसके बाद आगे देखते हैं कौन है अल्लाह, और लफ्ज अल्लाह अल्लाह ताला का असली नाम है। जैसे हर एक का एक असल नाम होता है ना, फिर कुछ उसके प्यार के नाम होते हैं। तो अल्लाह सुबहाना तला के 99 से जायद नाम है, 200 से जायद नाम मिलते हैं। अल्लाह लफ्ज असल नाम है, रियल नेम। बाकी सिफाती नाम है, आगे रहमान आता है तो उसमें भी बताती हूँ। चलिए अल्लाह की बात हुई, आगे देखे रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का रब। रब किसको कहते हैं? एक जुमला लिखिएगा, बहुत ही खूबसूरत तारीफ है रब की, है तो बहुत सारी, लेकिन आज आपको एक नई सोच देना चाहती हूँ। रब किसको कहते हैं? जब जितनी जरूरत हो उतना देने वाला। वो कैसे? बच्चा माँ के पेट में है, दांत नहीं है, अभी चबा नहीं सकता, अभी मैदा नहीं बना, तो उसको फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट करके ग्लूकोज की सूरत में माँ के पेट में देता रब। रब को पता है कि इस बच्चे ने अभी इस खाने को खा नहीं सकना, पेट में बच्चा माँ से ही एनर्जी लेता रहा, जितनी जरूरत उतना दिया। अब माँ की खाई हुई बोटियां अगर बच्चे के पेट में जाएं, नहीं हजम कर सकेगा। बच्चा माँ के पेट से बाहर आया, रोया, चंद घंटे के बाद माँ का सीना बच्चे के साथ लगाया। क्या आता शुरू में, जो माए हैं वो जानती हैं, पानी, कच्चा पानी, जिसको कच्ची लस्सी भी नहीं कहते। क्यों? कि अभी इस मासूम ने इतना ही पतला दूध बर्दाश्त करना है, कौन करता है, रब देता है। बच्चा पीता जाता है, हर दिन माँ का दूध गाढ़ा होता है, पता ही होगा आपको, क्योंकि अब बच्चे की जरूरत बढ़ती जा रही है, और जब बच्चा एक उठ के हरकत करता है कुछ, चंद दिन में दूध गाढ़ा हो जाता है। ये है रब। कौन ये रेशियो प्रोपोर्शन सेट करता है? आपने कई दफा बहू बेटियों को देखा होगा जो अपना फीड नहीं कराती, बेचारियां बच्चों के पेट की खराबी का शिकार रहती हैं। वो क्या हुआ, जरा दूध ज्यादा डाल दिया था कि एक ही रात में जवान हो जाए, अब पेट खराब हो गया। और कभी क्या कि दूध पी लिया, रोता ही जा रहा, क्या वो असल में आज दूध थोड़ा डाला था, पतला बन गया। रब्बिल आलमीन वो है जो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। मजे की बात देखिए एक और एंगल। पैदा हुआ बच्चा, कान है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनता है बच्चा। फिर आप देखिए आंखें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, होंठ है, पूरा अंदर से वजूद बना हुआ है। सबसे पहले कान बनते हैं बच्चे के पेट में, ये भी याद रखिए, ज्यादा सुनो। खैर ये बताइए, सब कुछ लेकर आता है, दांत क्यों नहीं है? वो क्यों अल्लाह ने साल के बाद देने हैं? क्योंकि रब्बिल आलमीन रब है। अगर पैदा होते बच्चे के मुंह में चुभने वाले दांत होते, कितनी माएं दूध पिलाती? ये है रब। जब खाने के वक्त करीब आए तो दांत निकलने शुरू हो गए, जब दूध से भड़कर ठोस पे आ सके मैदा मजबूत हो गया। रब वो है जो जर्रे को कमाल पर पहुंचाता है। रबूबियत है, इसी में तरबियत है, इसी में जिस्मानी नशो नुमा है, इसमें कल्बी, इसमें रूहानी, हर तरह से अल्लाह ताला बंदे को लेकर चलता है। और जब रब के लफ्ज के साथ अलालमीन लगा ले तो एक बड़ी खूबसूरत बात कह दी कि रब बिल आलमीन हूं मैं, तुम मुसलमानों का रब नहीं हो सिर्फ, यानी इसमें लिखी यूनिवर्सलिटी। अल्लाह ने रब्बिल आलमीन कहकर ये सिखा दिया कि मैं सब का रब हूं, काफिर का भी हूं, फाजिर का भी हूं, मोमिन का भी हूं, और कीड़ों मकोड़ों का भी रब हूं। बाज़ दफा चींटियों की वजह से अल्लाह हमें बारिश दे देता है, क्योंकि वो चींटियों का भी रब है, और आलमीन में तो खजाने भरे हुए हैं, परिंदों का जहान, चिड़ियों का जहान, जिन्नात का जहान, सब का रब है। जरा सा महसूस तो करें, कितना बड़ा मेरा रब, क्या हस्ती होगी वो। और ये एहसास कब होता है? जब जहाज में बैठकर नीचे देखे और ऊपर देखे। कई दफा जहाज की पोजीशन में ऐसे वक्त आते हैं, नीचे भी पानी है बादलों का और ऊपर भी पानी, नीचे तैर रहे हैं और ऊपर पूरी छत है। फिर आप ऊपर से ऊपर जाते हैं, दिल बंद होने लगता है। रहमतों के खजाने, बारिशों के खजाने, क्या क्या वो रब इस दुनिया में रख के बैठा है कि एक इंसान के लिए, और इंसान भी वो जो नाशुक्रा, जो सुनता ही नहीं, जो मानता ही नहीं, जो खुद को खुदा बनाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये आपको मुझे गौर व फिक्र की दावत दे रहा है, सोच की दावत दे रहा है कि खुद को जाया ना करो। और जब आप देखिए नमाज में सुबह उठते ही ये रोमांटिक बातें हो गईं, तो सारा दिन कैसा गुजरेगा? क्या फिर हम अल्लाह ताला की मोहब्बत में नहीं जिएंगे? और अगर सिर्फ एक नमाज ऐसी नसीब तो हो जाए, फजर में पढ़ ली इस तरह की सूरत फातिहा, तो जोहर तक क्या वो सुरूर नहीं रहेगा? देखिए, जिससे मोहब्बत होती है ना, उससे मुलाकात हो तो उसका एक सुरूर होता है। प्यारों से मुलाकात हो जाए, बंदा नशे में आ जाता है। प्यारे से गले मिले, सीने से लगे बाप के, कितना सुकून मिलता है, खुशी मिलती है ना। अब ये तो इंसानी रिश्ते हैं। अगर शऊर के साथ हमने फजर में सूरत अल फातिहा पढ़ी होगी, कभी नहीं हो सकता कि हम उखड़े उखड़े रहें और बिखरे बिखरे रहें। चलिए आगे चलते हैं। और रहमान रहीम, रहमान भी है और रहीम भी है, एक ही असल है इसकी, रहम। तिर्मिजी की रिवायत है, रहमान ने रहम को पैदा किया। रहम या रहम क्या? यूट्रस, मदर वूम, सबसे महफूज जगह होती है मां के पेट में। उस खामोश तीन पर्दों के बीच में एक बच्चे को अल्लाह रख देता है। आप अपने बच्चे को बिस्तर पर रख के कितनी दफा देखती हैं, गिरा तो नहीं? कितने खूबसूरत क्रेडल्स बना के भी माओं की जान पड़ी रहती है। और आप माशाल्लाह, वो गर्दन ठहरा सकता है, दुनिया में आ गया। जब वो क्या था, एक छोटा सा कतरा था, कुरान मतफी करारिम मकीन, पानी के एक बूंद को अल्लाह ने ऐसी प्यारी थैलियों में रखा कि ये रपचर ना हो। कभी आपने चीजें इधर से उधर मूव की होंगी, बाहर वो जो स्टेरोफोम और कुछ कुछ डालते हैं ना, एक पानी के कतरे को अल्लाह ताला एक बच्चे की शक्ल में दे रहे हैं और माँ के रहम में रखते हैं। फरमाया, रहम को पैदा किया और उसके बाद उसी से अपना नाम रहमान रखा, और कहा कि जो रहम के रिश्तों को बाकी रखेगा उसको मैं बाकी रखूंगा, और जो रहम को तोड़ेगा उसको तोड़ूंगा। क्या पता चला, रिश्ते नातों को जोड़ना अल्लाह को अच्छा लगता है। ये तिर्मिजी की रिवायत है। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने रहम को पैदा किया और उसको अर्श के नीचे रख दिया, और उसको कहा, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो तुझे तोड़ेगा मैं उसको तोड़ूंगा। तो रहम क्या है? रहमत। अल्लाह सुब्हान तआला का ये नाम इधर क्यों? और आपने ऊपर देखा है, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे भी ये तीनों नाम है, अल्लाह की ये सिफात दुनिया में मौजूद है। सूरत अल-अनाम में आता है, कतब अला नफ्सिहि रहमा, लिख दी उसने अपने नफ्स पे रहमत। ये नहीं कहा कतब अला नफ्सिहिल गजब, कतब अला नफ्सिहिल कहर, नहीं। अल्लाह अपने वजूद के एतबार से रहम वाला है, सॉफ्ट, काइंड, मोहब्बत वाला, प्यार वाला। हाँ, कहार है, जब लोग उसकी नहीं मानते फिर उनको बदला देता, जुन्तेकाम भी है, लेकिन उसको अपनी जो सिफत पसंद है ना, वो रहमान है। अब सवाल पैदा होता है कि जब एक ही लफ्ज था तो फिर रहमान ही काफी था, तो रहमान के बाद रहीम क्यों है? तो इसके तीन फर्क नोट कीजिएगा। देखिए कि अरबी जुबान में साउंड से भी बात समझ आती है। आप मेरे हाथ के इशारे को देखे, रहमान ऐसे लग रहा है ना, तूफान, फोलान, इसमें जोश है। और अगर आप देखें रहीम, ये देखिए रहीम मुसलसल, रहमान में जोश है, हंगामी हालात में मदद करने वाला, और रहीम में कॉन्टिन्यूटी है। बात समझे? हमें इंसानों पर रहम आता है कब? जब हम उनको किसी दुख में मुब्तला देखते हैं, दो तीन दिन बाद खत्म। जलजला आया, सब मदद के लिए तैयार, 15 दिन गुजर के खत्म। कौन है जो जलजले से बच जाने वालों को आज तक पाल पोस रहा है? वो रहीम है। बात समझे? रहमान में जोश है। और रहमान का जो लफ्ज है ना, दूसरा फर्क नोट कीजिए, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं है किसी पर रहम करने की, जबकि रहीम में कंडीशन है, शर्त है। मसलन बारिश बरसती है, मुसलमान भी उससे फायदा उठाता है, काफिर भी उठाता है ना। खाना पैदा किया, अगर आम खाता है काफिर, उसको भी मीठा लगता है, मोमिन को भी लगता है। ये अल्लाह की सिफत रहमान है। दुनिया में कुफार जो फवायद उठा रहे हैं ना गुनाहों और नाशुक्री के बावजूद, वो अल्लाह ताला की सिफत रहमान की वजह से है। लेकिन रहीमी के वक्का नबिल मोमिनीन रहीमा, अल्लाह मोमिनों के साथ रहीम होगा क्यामत के दिन। फर्क क्या नोट हुआ कि दुनिया में अल्लाह ताला रहमान है और आखिरत में रहीम होगा। کہ آپ دنیا میں ایک مومن کے توسط یا اس کے واسطے سے اس کے وسیلے سے کافر کو بھی کھلا پلا رہا ہے، لیکن آخرت میں صرف ایمان والوں کو کھلائے پلائے گا. اور یہ جو نام رحمان ہے نا، جیسے ابھی میں نے اوپر ذکر کیا نا کہ لفظ اللہ اللہ کا اصلی نام ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے لیے لفظ الرحمن بھی رکھا ہوا ہے. جیسے آپ ایک مالا سوچے نا، بیچ میں ایک بڑا موتی ہوتا ہے، پھر اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے موتی اوپر جاتے ہیں. بیچ میں اگر لفظ اللہ ہے نا، تو اس کے ایک طرف الرحمن ہے تو دوسری طرف الرحیم ہے، پھر اوپر دوسرے نگینے جکڑے جاتے ہیں. اللہ نے خود اپنے لیے یہ نام استعمال کیا ہے، الرحمن علم القرآن، سورۃ الرحمن کے آغاز میں، اور قرآن کی ایک بڑی خوبصورت سورۃ بھی ہے. تو اللہ کے رحم کو محسوس کرنا ہے. حدیث میں خلاصہ آتا ہے کہ اگر اللہ کی صفت رحمت کا کافر کو پتہ لگ جائے تو وہ بھی جنت کی امید لگا لے کہ ہوں میں برا، مانتا تو نہیں ہوں، لیکن یہ ذات بڑی رحم والی ہے، اس نے مجھے بھی بخش دینا ہے. بٹ اس کے اپوزٹ، اگر اللہ کی قہاریت اور اللہ کی پکڑ کا مومنوں کو بھی پتہ لگ جائے تو وہ بھی کبھی جنت کی امید نہ رکھیں کہ اللہ ہے تو رحم والا، بٹ میرے گناہ اتنے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ لینا ہے. میرا آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے اس پہ؟ ہم بھی اپنے اندر رحم لائیں، لوگوں کو سہولتیں، محبتوں کو عام کریں. آج ہماری اندر دوسروں کے لیے رحمت نہیں رہی، ہم کٹھور ہو گئے، ہم اپنے ذاتی فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو نقصان دے دیتے ہیں. اور اس میں بھی بہت کچھ ہے، طویل باتیں ہیں، لیکن نماز میں جب آپ پڑھیں ذرا خلاصہ کر لیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں میرے اللہ کی ہیں. کون سا اللہ؟ رب العالمین، جو مجھے کھلاتا پلاتا دیا لیا. جب یہ لفظ بولے نا، اپنی ساری نعمتوں کو سوچیں، کبھی بچوں کا تصور کر لیں، کبھی دین کی نعمت، کبھی علم کی نعمت، کبھی قرآن کی نعمت، کبھی گھر داری، جو نعمتیں ملی ہیں نا اس کو سوچیں، اور ساتھ ہی پھر الرحمن الرحیم. ایسے نہیں لگ رہا کہ ایک لو سٹوری چل رہی ہے، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. اب ساتھ ہی لگا، اچھا وہ تو ہے رحم والا، بہت اچھا ہے، مجھے کیا فکر ہے، جو مرضی کرو، اللہ بڑا رحم والا ہے. ہم پاکستانیوں کا پیٹ جملہ ہے، کہانی مالک یوم الدین بھی ہوں، بدلے کے دن کا مالک بھی ہوں، یعنی ذرا سی غبارے میں سے ہوا نکالو. تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں، مالک کس کو کہتے ہیں؟ اونر. دنیا میں ہم بھی مالک ہیں، مثلا مثال ہے کہ اس فون کی میں مالک ہوں، لیکن کیا یہ فون میری ملکیت میں ہونے کے باوجود 100% میری مرضی سے چلتا ہے؟ یہ میرے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ کیوں جاتا ہے؟ کبھی اس کی بیٹری لو کی ہو جاتی ہے، یہ چوری کی ہو جاتا ہے، کبھی یہ سٹک کی ہو جاتا ہے. کیا پتا چلا میں مالک ہوں اس کی، پر میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، ایک وقتی ملکیت ہے. اچھا یہ گھر ہے، مثال لے لیں اپنے گھر کو، کرائے پہ لیا ہوا ہے. اب جو مالک مکان ہے، آپ کہتے ہیں یہ مالک مکان ہے، وہ مالک تو ہے، لیکن کیا وہ اپنے گھر کو خراب ہونے سے روک سکتا ہے؟ وقت کے اثرات جو آئیں گے وہ روکے گا؟ نہیں. وقتی مالک ہے، وہ آتا ہے ہر مہینے آپ سے کرایہ لے جاتا ہے. کیا پتا چلا؟ اب سوال لکھئے کہ مالک ہی یوم الدین کیوں کا، اور یوم کہتے ہیں دن کو، دین کہتے ہیں بدلے کو، قیامت مراد ہے، اور دین اس لیے کہ قیامت کے دن بدلے ملنے ہیں، دین کہتے ہیں قرضے کو، یعنی دنیا میں ہم گناہوں کے باوجود نعمتیں پا رہے ہیں، قیامت کے دن جا کے چک چکا ہوگا، مک مکا ادھر ہونا. جیسے سارا سال ایک بزنس مین خرچ کرتا رہتا ہے، اینڈ پہ حساب ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے زیادہ لے لیا ہے یا کچھ اور بھی رہتا ہے، ٹیکس دیتے رہتے ہیں سارا سال، بعد میں حساب کتاب ہوتا ہے. یوم الدین کا لفظ آپ کو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں میرے آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، یہ فائنل نہیں ہے، اصل میں آخر میں جا کے قیامت کے دن آخری فائنل حساب ہوگا، کیا لیا تھا کیا دیا تھا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کا حساب ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ مالک یوم الدین کیوں کہا؟ کیا اللہ دنیا میں مالک نہیں ہے؟ ہے نا، ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے مالک دنیا، کہہ سکتے ہیں نا. فرق کیا ہے؟ دیکھیں دنیا میں وقتی ملکیتیں اللہ نے دی ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، ہم اپنی گاڑی کے مالک، اپنے گھر کے مالک، بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو اب کہتے ہیں ہم آپ کے مالک ہیں. دنیا میں وقتی ملکیتیں ہیں، بٹ آخرت میں کوئی وقتی مالک بھی نہیں ہوگا، وہاں صرف ایک ہستی ہے جو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، خلاصہ ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لپیٹے گا اور یوں گھمائے گا قیامت کے دن، لٹو کی طرح گھمائے گا اور پھر پکارے گا ان الملک، میں مالک ہوں. اور اسی کی ایک اور یعنی مالک کی پروناؤنسیشن ایک قرأت میں ملک بھی آتی ہے. آپ کو پتہ نا سات قرأت ہیں، ان میں سے ایک میں ملک ہے اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. تو مالک اور ملک دونوں میں فرق ہے، مالک بھی اللہ ملک بھی اللہ. جس طرح کوئی بادشاہ اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا، جس طرح مالک کوئی اپنی ملکیت میں کسی کو نہیں شامل کرتا، اللہ بھی نہیں کرتا. تو مالک یوم الدین کیوں ہے؟ کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بھی مالک نہیں ہوگا. آخری پارے پڑھ کے دیکھ لیجئے، سورۃ الانفطار میں کیا آتا ہے، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن نہیں کوئی مالک ہوگا کسی کا، تھوڑا بھی، بچے بھی نہیں آپ کی ملکیت میں رہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، تو اس دن پوری کی پوری بادشاہت اس کی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کی تعریفیں کر رہے تھے، تو مالک یوم الدین ہے، اس پہ کیا تعریف کی بات ہے؟ نہیں سمجھے. لوگ کہتے ہیں نہ ہوتا اللہ مالک یوم الدین کا، کھلا چھوڑ دے. نہیں، اپنا استاد پیپر چیک کرے، نمبر زیادہ آتے ہیں، باہر کا کرے، نمبر کم آتے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سارا سال پڑھا تھا اور آخر میں بیمار ہو گئے. اب باہر والے کو کیا پتا آپ کی کیا مجبوری تھی، اس نے تو آپ کا پیپر دے کے نمبر دینے. استاد کہے گا نہیں، یہ سارا سال پاس ہوتا رہے، آج کوئی گڑبڑ ہے، بلائے گا، پوچھے گا، بات کرے گا، کچھ نہ کچھ رعایتی نمبر دے گا. ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے. اللہ میرے پیپر تو ہی چیک کر. کسی کا کال ہے، بہت ہی خوبصورت کال ہے، کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن مجھے اختیار ملے کہ میرا حساب کتاب میرے سگے ماں باپ کریں یا اللہ کرے، تو میں اللہ کو چوز کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے اللہ مجھ سے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اور میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ میں نے نہیں کسی اور کو دینا اپنا حساب. کیسے وہ ان بندے کے پردے رکھتا ہے. ایسی ایک چھوٹی سی کوٹیشن پڑھی، نام لیے بغیر ذکر کر دیتی ہوں. کوئی شخص تھے تو دنیا دار تھے، پھر کسی جماعت کی کوششوں سے وہ دین پہ آ گئے. اب جہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ درس و تدریس اور تبلیغ کے جاتے تو یہ بھی ساتھ ہوتے، تو جب محفل برپا ہوتی تو مائک پہ آ کر ایک صاحب ان کا تعارف کراتے. اب ہم ایک ایسے صاحب کا تعارف کراتے ہیں جو چرس پیتے تھے، لیکن ہماری جماعت کو جوائن کیا اور کوشش کی تو اس ان کی چرس چھٹ گئی. آئیے ذرا آپ اپنے جذبات بتائیے. خیر وہ آئے، انہوں نے مائک پہ اپنے جذبات بتائے، واقعی میں چرس پیتا تھا، پھر میں نے ان کی کوششوں سے یہ کیا، میں چھٹ گیا. اب معمولی ہی ہو گیا. دوسری جگہ پھر کسی دن گئے تو وہاں صاحب نے پھر بلا لیا. اب آپ کو میں ایک ایسے شخص سے ملاتا ہوں جو چرس پیتے تھے، لیکن اب یہ ہو گیا. جب تین چار دفعہ ان کا یہی تعارف کرایا گیا، کہنے لگے جب تک گناہ گار تھا اللہ نے میرا پردہ رکھا، تم لوگوں نے ہر جگہ میرا بول کھولنا شروع کر دیا. یہ ہے مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک. آپ کو مجھے اس وقت لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہم رات کو کیا گناہ کر کے آئے ہیں، نہاتے دھوتے صاف، سارا رات گناہ کی محفل میں بیٹھے رہے، کبھی نہیں صبح اللہ جائے نماز پہ کھڑا ہوتے ہوئے کہتا شرم نہیں آتی. جب ہم نیک بن کے لوگوں میں آتے ہیں، لوگوں کو کیا پتا ہمارے دل میں کتنے کینے ہیں، کتنے بغض ہیں، کتنی گندگی ہیں. یہ مالک یوم الدین کا حوصلہ ہے کہ دنیا میں بھی ہمارے ابو کو چھپاتا ہے تو آخرت میں بھی چھپائے گا. یہاں تک سورت کا ایک حصہ پورا ہوتا ہے، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی صفات. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری تعریفیں کر چکتا ہے تو اب اگلی جو آیت آ رہی ہے نا، یہ آدھی اللہ کے لیے آدھی بندے کے لیے. کیسے؟ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. بھئی پیچھے تو بندہ اور رب تھا، یہاں جمع کے سیگے کیوں آ گئے؟ یہ ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ ایاک نعبد، اللہ صرف تیری ہی میں عبادت کرتی ہوں. وایاک استعین، الف ہوگا نا تو میں، نون ہوگا تو ہم ہوتا ہے. یہ عربی زبان کا ایک فرق آپ کو ہلکا سا پتہ لگتا ہے. جمع کی بات کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ساری کائنات، ساری مخلوق کا حق ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی کرے. اجتماعیت کی طرف اشارہ. چلیے اب اس آیت میں دیکھیے کہ پہلی چار آیتوں میں اللہ کی تعریفیں تھیں، اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آدھی اللہ کے لیے آدھی بندے کے لیے، اور اس کے بعد والا پورا حصہ ایک دعا ہے. دعا दुआ मांगने का अदब और सलीका भी इसमें सिखाया जा रहा है। बंदगी क्या होती है, तीन दर्जे हैं इसके। नंबर एक, अल्लाह की इबादत करना, जिसको हम इबादत कहते हैं, नमाज, रोजा, हज, वर्शिप के मानों में। दूसरा इसका दर्जा होता है अल्लाह की बात भी मानना, इताअत के मानों में, सबमिशन इंग्लिश में लिख लें। पहली क्या है, इबादत करना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। दूसरी ये कि अब उसकी बात भी मानो, यानी रब को माना है तो रब की भी मानो। तीसरा इसका दर्जा होता है गुलामी, यानी नमाज भी पढ़ो, फिर उसकी बात भी मानो, इसके बावजूद खुद को अल्लाह का बंदा करार दो। ये है स्लेवरी। जब तक या कना बुदू में ये तीनों चीजें नहीं आती, बंदगी का तस्वर पूरा नहीं होता। और जब आप अल्लाह को ये कहते नहीं, या का ये जो लफ्ज या बड़ा है, मैं आप देख रहे हैं शुरू में दो दफा पूरी आयत में, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, ये ही में क्यामत छुपी हुई है। मैं इसको गलत अंदाज से अगर पढ़ के दिखाऊं, अल्लाह ताला हमारी इसलाह कर दे, क्योंकि कहते में तो हम हमेशा या का नाबुद करते हैं, लेकिन रियल में हम क्या कहते हैं, तेरी भी हम इबादत करते हैं और तुझसे भी हम मदद मांगते हैं। नहीं फर्क समझ आया? एक बीवी अपने शौहर से कहती है, मैं आपकी ही बीवी हूं, और कभी कह दे मैं आपकी भी बीवी हूं। ये फर्क है। कोई गैरतमंद शौहर ये बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा, तो अल्लाह भी नहीं बर्दाश्त करता। सारी शिर्क की जड़ कट जाती है, हर किस्म के शिर्क की जड़ कट जाती है जब बंदगी और इस्तेआनत का ये कॉन्सेप्ट समझ आता है। मैं दावत दूंगी कि आप इस आयत को तफसीर वाली सूरत फातिहा में से समझे जाके, इसके ऊपर किताबों की किताबें लिखी हैं। सिर्फ सूरत फातिहा की तफसीर में इतनी मोटी किताबें मेरे पास भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 300 सफ़ों की एक जिल्द है। आपने अबुल कलाम आजाद का नाम सुना होगा, सिर्फ सूरत फातिहा पर उनकी तफसीर है, पूरे दीन का खुलासा है। इस वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत महसूस करें कि जब फुर्सत मिले इसकी डिटेल सुने। मैं तो इतनी बात कह के आगे जा सकती हूँ कि या का नाम बुदू क्या है, कि अल्लाह मैं सबसे छोटी हूँ, और या का नस्ताइन तो सबसे बड़ा। फिर और जुमला बोल देती हूँ, अल्लाह अकबर इन्नी असगर। हम अल्लाह अकबर बहुत दफ़ा कहते हैं, बात नहीं बनती जब तक खुद को छोटा नहीं कहते। हम कहते अल्लाह तू भी बड़ा, मैं भी बड़ी, तू भी बड़ा, खानदान भी बड़ा, तू भी बड़ा, बच्चे भी बड़े, ये नहीं है। अल्लाह कहता है मुझे बड़ा को बस। और ये जब अपनी पोजीशन समझ आती है ना, फिर इंसान को कोई दीन का हुक्म बुरा नहीं लगता। अब आप देखिए, आपने कहा मैं अल्लाह तेरी गुलाम हूँ, बंदी हूँ, बंदे को क्या चाहिए होता है? यानी बंदी को आप अपने तौर पर कह लीजिए मासी, आज गुलामी तो नहीं है ना। आपकी मासी घर में आती, आते ही वो क्या चाहती है, क्या आप उसको काम बताएं? माइंड तो नहीं करती, वो तो खुश होगी। और अगर आप किसी को आते कहते नहीं नहीं जाएं, आपसे कोई काम नहीं लेना, तो परेशान हो जाएगी कि मेरी तनख्वाह नहीं मिलनी मुझे। या का नाबुदू के लफ्ज में ये बात छुपी है कि बंदा अल्लाह से कोई गाइडलाइन मांग रहा है कि अल्लाह मुझे वो काम दे। नमाजों में जब या का नाबुदू कहते हैं, फिर जाय नमाज तय करते हैं ना, तो अल्लाह से पूछ रहे होते हैं कि अल्लाह जी अब मुझे बताएं मैं आज क्या काम करूं। बंदा हाजिर है, गुलाम आ गया है, अब हुक्म करें काम क्या करूं। ये फीलिंग आएगी ना, तो फिर हमें शरीयत खूबसूरत लगेगी। फजर में पूछा करें, अल्लाह जी अब बताएं मैं इसके बाद अब क्या करूं, मेरी थिंग्स टू डू के, क्या ना करूं क्या करूं। और देखिए, मासी जितने मर्जी काम कर ले, पर वो करे जो आपने नहीं कहा, तो आप खुश नहीं होंगे। इसी तरह अपनी मर्जी की नेकियां करना पसंद की बात नहीं है। अब देखिए, अल्लाह और बंदे की बातें हुई, अब मांगने की चीजें तो बड़ी हैं, पर एक चीज, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, क्योंकि सबसे कीमती दौलत हिदायत है, गाइडेंस। गाइडेंस इज अ गिफ्ट, हदिया है एक, क्योंकि हिदायत ना हो तो सब बेकार। बच्चे हैं हिदायत पे नहीं है, बेकार। गाड़ी है चलानी नहीं आती, बेकार है। तो हिदायत जिंदगी को खूबसूरत कर देती है। अल्लाह की मर्जी के साथ अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करना हिदायत है। और सिराते मुस्तकीम क्या है? सीधा रास्ता। सीधे रास्ते को सुनकर हमें बिल्कुल समझ आती है क्या लफ्ज है। अब आप थोड़ा सा इस पर अपनी तवज्जो रखें, सिराते मुस्तकीम क्या है? सीधा रास्ता। मैं एक जुमला बोलने की जरूरत करती हूँ, उसको लिख ले, इसी में सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। दुनिया में जो सिराते मुस्तकीम है ना, आखरत में वो ही पुल सराता है। जो लोग दुनिया में सिराते मुस्तकीम पर जम जाएंगे, इंशाल्लाह कल पुल सरात पे भी जम जाएंगे। और अगर आज दुनिया में बात बात पे हिदायत के रास्ते को छोड़ते हैं और सिराते मुस्तकीम को छोड़ते हैं, तो वहां भी स्लिपरी रास्ते होंगे, इधर से उधर लुढ़कते भुड़केंगे। सूरत हदीद में इसकी बड़ी डिटेल्स है। क्या पता चला कि दुनिया में हर बंदा जिस रास्ते पे चल रहा था, कहता जी मेरा रास्ता सीधा है। आप जाके पूछिए कुफार से, पूछिए वो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। फासिकों से पूछिए, मुनाफिकों से पूछिए। अब सवाल पैदा होता है, कौन बताएगा कि सीधा रास्ता कौन सा है? समझ रहे ना, हर एक को अपना तरीका अच्छा लगता है। तो कौन बताएगा? अल्लाह और उसका रसूल बताएगा। जिसका घर होता है वही रास्ता बताता है, वही ठीक होता है। एक मौके पे नबी सल्लम बैठे थे, आपने फरमाया कि जब एक बंदा सिराते मुस्तकीम पे चलने लगता है तो उसके चारों तरफ एक दीवार होती है, यानी इमेजिनेशन में ना एक दीवार है सीधी, एक बंदा उस पर चल रहा है, थोड़ी थोड़ी दूर उसमें दरवाजे हैं और कुछ दूर जाए तो कुछ पर्दे हैं। जब बंदा उस पर चलता है ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद शैतान पर्दे में से झांकता है और कहते हैं इधर आओ, इधर आओ, देखो मेरे पीछे कितना कुछ है, इधर इधर हुसन है, इधर औरतें हैं, इधर माल है। जो बंदा उसकी बातों के कान लपेट के सीधा चलता जाएगा, फरमाया उसके आखिर में जन्नत है, यानी सिराते मुस्तकीम के एंड पे जन्नत लिखा हुआ है। एक शख्स ने भी अगर उस पर्दे को खोल के देख लिया तो वो जहन्नम के रस्तों में जाएगा। आपने फरमाया ये जो जो दो दीवारें हैं ना साइडों पे, ये अल्लाह की हुदूद है, शरीयत की पाबंदियां, क्या हलाल है क्या हराम है। और ये जो पर्दे हैं ना, ये शैतान की गफलतें हैं। आपके मेरे लिए जिंदगी के इस सफर में बहुत जरूरी है कि मरते दम तक सिराते मुस्तकीम पे हो। और साथ ही बंदा कहते हैं सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, उनका रास्ता जिन पे तेरे इनाम हुए। और इनाम किन पे हुए? नबियों पे हुए, सहाबा पे हुए, शुहदा पे हुए, सालेहीन पे हुए, नेक लोगों पे हुए। और गजब किस पे हुए? जिनके पास इल्म था, अमल नहीं किया, जानते बूझते दीन को बदला। और दालिम कौन थे? बेल, जाहिल, नकम्मे, जिन्होंने इल्म के लिए वक्त लगाना पसंद ही ना किया। नबी सल्लम एक मौके पे कब्रिस्तान में थे, सहाबा में से किसी का इंतकाल हुआ, कब्र खोदने में देर थी, आप जमीन पे बैठ गए। फिर आपने एक छोटी सी स्टिक ली, जैसे कोई शाख का टुकड़ा, फिर उससे जमीन पर एक सीधी लाइन खींची, फिर उसके इर्द गिर्द टेढ़ी टेढ़ी लाइनें खींची, फिर सहाबा को बुलाया का इधर आओ, ये जो सीधी रास्ता है ना, हाजा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है और इसके आगे जन्नत है। और ये जो टेढ़े टेढ़े रास्ते हैं, आपने फरमाया ये टेढ़े रास्ते शैतान के हैं, जो सीधे रास्ते को छोड़ेगा वो जरूर टेढ़े पे जाएगा और वो जहन्नुम में पहुंच जाएगा। तो क्या पता चला, हर रोज ये दुआ पर मैं मांगते हैं कि अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे जमाए रखना। क्यों? मिल तो गया रास्ता, मुसलमान है माशाल्लाह, कुरान से जुड़े हुए हैं। आप घर से निकलते हैं और आपको यहां से एयरपोर्ट जाना है 1 घंटे की मुसाफत पे, यहां से रास्ता बदल गए, भटक गए तो भी नहीं पहुंचेंगे। यहां से बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब पहुंच के भटक जाए, पहुंचेंगे फिर भी नहीं। इसी तरह जिंदगी के शुरू से लेके मौत के दरवाजे तक आपको मुझे सिराते मुस्तकीम पे रहने की जरूरत है। इसीलिए आप देखिए कि हम नबी सल्लम भी यही दुआ मांगते थे। क्या आपको नहीं पता था हिदायत क्या है? और नौजबिला क्या आप हिदायत पे नहीं थे? हिदायत पे थे, लेकिन शैतान लगा रहता है। एक इमाम थे, मौत का वक्त आया, डुबकियां मौत की थी, बेहोशियों में क्या कहते हैं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, फिर होश आ गई, थोड़ी तबीयत बहली, बेटों ने कहा बाप क्या कह रहे थे? कहा मेरे पास शैतान आया था, कहने लगा मालिक तू मेरे हाथों से निकल गया, मैंने सारी जिंदगी तुझे भटकाना चाहा, लेकिन तू आज मेरे हाथ से बच के जा रहा है। तो क्या कहा? अभी नहीं, क्योंकि अभी जिंदा हूं। और लिख लें एक बड़ा बड़ा जुमला, शैतान सिराते मुस्तकीम पे चलने वालों के पीछे लगा होता है। कुफार के पीछे वो क्यों लगे? उसको पता है ये तो अब माशाल्लाह जहन्नुम का रास्ता ले चुके, समझ गए। मुनाफिकों के पीछे क्यों चले? फासिकों का क्यों चले? जो उसको पता है कि ये सारे लोग जो है ना, ये तो अपने अपने काम कर चुके। तो ये था एक खुलासा सूरत अल फातिहा का। इसमें से पॉइंट्स आपने खुद निकालने हैं, मुहासबा करें, अपनी फिक्र करें, इस बात की सोच रखें कि मैंने इस सूरत को जिंदा करना है, यकीन कीजिए ताल्लुक बिल्ला की सीढ़ी सूरत अल फातिहा। अल्लाह और बंदे के बीच का ताल्लुक सूरत अल फातिहा से जुड़ता है। इब्राहिम बिन अदम के बारे में आता है कि गुलाम ले आए, पूछा क्या नाम है, कहा गुलाम का क्या नाम है, जिस नाम से आप पुकारेंगे वही मेरा नाम है। ठीक है, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, खाते क्या हो, कहा गुलाम की क्या औकात है, जो आप देंगे वही खाऊंगा। भाई तुम करोगे क्या, कहा जो आप कहेंगे। यानी हर जवाब सुन के अमेज्ड, परेशान, दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगे कितने चंद टकों में खरीद के लाया हूं, हर बात पे कह रहा है जो आप कहें, जो आपकी मर्जी। और एक मैं हूं, दिन में 17 बार कहता हूं या का नाबुदो या का नस्ताईं, इसके बावजूद भी मर्जियां अपनी करता हूं। तो ये है आज की सूरत अल फातिहा। मर्जियों को तोड़े, अल्लाह के आगे झुके। हर नमाज में इस सूरत को पढ़ते वक्त इसके तर्जमे पे गौर करें। आज हमने अगर ये पढ़ लिया, ये सुन लिया, तो इसके बाद ये तकाजा करती है कि हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करें। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। बगैर सबक सीखे, बगैर बात को लिए दिए काम कर देना ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी दूसरी जुबान की कोई किताब पढ़ दी है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वह आपके मेरे लिए इसको आसान फरमाए। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.